ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो वृंदावन में प्रवेश करके श्री कृष्ण किस तरह विलास किया करते थे उसका अति देशम आह अति देश कहते हैं सबके नमूना नमूना का इंग्लिश कहते हैं। तो प्रतिदिन प्राय श्री कृष्ण इस तरह की लीलाएं किया करते थे वो इस तरह श्री सुपरवाच एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण प्रीतमन पशु रेमे संचारयन अत्रे सरितरोद सुसांगः श्री सुपरवाच एवं श्रीमत् वृंदावनम इस प्रकार अतिशय शोभा से युक्त वृंदावन में श्री कृष्ण सानुगह अपने अनुगामियों के साथ श्री बलराम जी आदि के साथ प्रीत मना प्रसन्न मन से अद्री के गोवर्धन पर्वत के सानुषु घाटियों में और सरित रोधसु गोवर्धन के समीप बहने वाली मास गंगा आदि के तटों पर पशु संचारण रेमे पशुओं को चराते हुए विहार करते थे। ये मुख्य लीला के स्थान का निर्देश कर रहे हैं। अद्रह सरित रोधसु अद्री के सरित रोधों पर तटों पर रोध का अर्थ होता है बैंक नदियों के दोनों तट को सरित रोध कर जल के बैंक को रोकता है तट सरित रोध बहुवचन का प्रयोग है। पहले जिस समय भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे ब्रज में तो बहुत छोटी छोटी नदियां बहती थी गोवर्धन पर्वत से भी नदियां निकलती थी जिसमें मानसी गंगा प्रसिद्ध नदी थी और वैसे हिमालय से निकलने वाली यमुना नदी तो प्रसिद्ध है जो ब्रज से होकर बहती थी आज भी है और यमुना के पूर्वी तट पर पांच वन है और पश्चिम तट पर सात वन है जिनको द्वादश कांगन कहा जाता है द्वादश कांगन जहां जहां लीला कैलस श्री नंद नंदन। तो यमुना के इन बारह वनों में भगवान विविध लीला करते हैं आज भी जहां जहां लीला कैलस श्री नंद नंदन है। तो वास्तव में संपूर्ण ब्रजमंडल इन बारह वनों में विभक्त है उनके बहुत क्षेत्र हैं प्राय बारह वनों में ही सारा ब्रजमंडल विभक्त है और यहाँ तक कि मथुरा नगर मधुबन के अंदर माना जाता है। और एक बार तो सबके लिए वृंदावन शब्द का प्रयोग किया जाता है ब्रजमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है माथुर मंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है संपूर्ण ब्रजमंडल के लिए। तो सुंदर वृंदावन में श्रीमद वृंदावन शब्द का प्रयोग है श्रीमत श्री का अर्थ है सुंदरता मत माने युक्त वाला परम सुंदर वृंदावन में श्री कृष्ण पशुओं को चराते हुए इस तरह रमते थे और विशेष करके गोवर्धन के तलहटी में और मानसी गंगा आदि के तटों पर किस तरह वे विहार करते थे इसका वर्णन करते हैं। क्वचित गायति गायत सो मतांधाले स्वनु व्रत ही उपगीयमान चरित श्रद्वी संकर्षणाद्भुत क्वचित कस्मिंश्चित प्रदेश से कदाचित इति वा क्वचित का अर्थ होता है किसी किसी स्थान पर अथवा कभी कभी श्री कृष्ण भावरों के साथ गाने लगते थे मदांधास मदांध आलिसु गायत्सु सत्सु गायती। भावने कहीं कहीं गाते थे ठोरों पर बैठ करके, तो श्री कृष्ण उनके स्वर में स्वर मिलाकर उनके स्वर का अतिक्रमण न करके उनके साथ गाने लगते थे जगह जगह। प्राय चलते से चलते थे भावने की तरफ, थोड़ा थोड़ा धन 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 मनो भी गाते थे और बच्चों से कहते थे तुम लोग भी गाओ, अधिक मत बोलना कम मत बोलना, मिला करके गाने लगते थे। आज भी देखा जाता है गांव के बच्चे विशेष करके वन में रहने वाले लड़के जब वन में जाते हैं गाय चराने भैंस चराने तो इस तरह से गाते हैं घोड़ों के साथ पक्षियों के साथ। और कोयल के साथ तो प्राय देखा जाता है आजकल, कोई भारतवर्ष में जाकर देखे प्राय कोयल कुहू करती रहती है, पीछे से बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों के गाने से कोयल और निरंतर गाते रहते हैं कू 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 ऐसे करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण भी इस तरह की लीला किया करते थे, पहले भावों के साथ गाने का वर्णन कर रहे हैं। और आप क्रिया समझ रहे हैं संस्कृत की, भूतकालीन क्रिया का प्रयोग नहीं है, वर्तमान क्रिया का प्रयोग है, मतलब प्रेजेंट टेंस में है गायती। इससे यह सिद्ध होता है कि यह नित्य लीला है भगवान की। सुखदेव गोस्वामी जब कथा कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण गाते थे, कृष्ण गाते हैं ऐसा प्रयोग करते हैं, क्वचित गायती। क्वचित गायती कभी कभी गाते हैं, कौन गायत सुर मदांध अलिसु अनुव्रत है। अनुव्रत मतलब अपने अनुगामी सखाओं के साथ कभी कभी गाते हैं, मद से अंधा भ्रमरों के साथ। वृंदावन के दिव्य पुष्पों का पराग पी पी करके भौरे मदांध रहते हैं। यह मदांध का अर्थ है आनंद से विशुद्ध हो जाना। भौरा वृंदावन में तो स्वभाव से ही आनंदित रहते हैं, लेकिन वृंदावन के दिव्य पुष्पों के सुगंध से और उनके पराग से भावों की मस्ती और बढ़ जाती है, इसीलिए मदांध शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्राकृत जगत में भी हम लोग इस शब्द को सुनते हैं, कोई मदिरा पी लेता है तो उसको मदिरा मदांध कहते हैं। शराब पी लेने के बाद आदमी को शरीर की शुद्धि भूल जाती है, कभी कभी वस्त्र भी भूल जाता है, बकता रहता है क्या न करे। लेकिन यह आनंद जनित अज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है। लोग कहते हैं कि सब कार्यों में बहुत आनंद है, गंजा पीने में और शराब पीने में, लेकिन यह आनंद नहीं है, यह अज्ञान है एक प्रकार का। जो पीता है आदमी तो उसे शरीर का और यहाँ तक कि समाज का लाज शर्म तब का ध्यान नहीं रहता है, यह अज्ञान है वास्तव में। और अज्ञान बस थोड़े काल के लिए दुख को भूल जाता है, दुख का थोड़ा विस्मरण जैसा हो जाता है, तो उस समय सुख का भी विस्मरण होता है, उसे समाज का विस्मरण होता है, शरीर का विस्मरण होता है। लेकिन वृंदावन के भावों का जो मदांधता है उनकी, वह आनंद जनित है। यह एक प्रेम का विकार है, भक्त जब आनंद में होता है तो उस समय शरीर की सुध भूल जाता है, समाज को भूल जाता है और सब भूल जाता है, वह अपने स्वरूप में होता है। तो वृंदावन के भावरे सदा कृष्ण के रस में रहते हैं, इसलिए उनको मदांध कहा गया है। कृष्ण भावना चलित आनंद के मद से अंध होता, अंध का अर्थ है अनुसंधान न रहना शरीर आदि का, तो गाते ही रहते हैं। तो ऐसे भावों के साथ से कृष्ण गाते हैं और उनका चरित्र उनके अनुगामी गाते हैं, उपगीय मानचरित। श्री कृष्ण गा रहे हैं भावों के साथ और श्री कृष्ण के विषय में गीत गा रहे हैं उनके सखा। इस तरह गान चल रहा है, सब मिला करके भावों का अनुगमन हो रहा है। मुख्य गायक भ्रमर है, इनको गंधर्व राज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। कभी भावों की प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं देखो सखे इतने सुंदर गा रहे हैं कि इनके आगे गंधर्व भी कुछ नहीं है, कितना सुंदर गा रहे हैं। परंतु उपगीय मानचरित श्री कृष्ण के शोभा चरित लीला आदि का और सगरी कहते हैं मालाधारी पुष्पमाला वाले। श्री कृष्ण का एक नाम ही है वनमाली, हमेशा पुष्प की माला पहनते रहते हैं। और वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं तो वृंदावन की अधिदेवी योग माया वृंदा देवी क्षण क्षण में नई नई मालाएं अर्पित करती रहती हैं, या सखा भी नया नया माला बनाते रहते हैं, धारण कराते रहते हैं। तो इसलिए रघुवी अलग से शब्द दिया जा रहा है, माला वाले विशिष्ट मालाधारी। श्री कृष्ण वृंदावन में हजारों माला एक दिन में धारण करते हैं। सखा एक बनाकर लाता है, कहता है हमारी माला धारण करो, और गोपीजन छिप करके आती हैं वन में तो वे भी भगवान श्री कृष्ण को माला अर्पित करती हैं, राधा रानी अर्पित करती हैं, योग माया अर्पित करती हैं, वृंदा देवी अर्पित करती हैं। और प्रत्येक वृक्ष चाहता है कि हमारे पुष्प की माला धारण करें, लताएं चाहती हैं हमारे पुष्प की माला धारण करें। तो इस प्रकार निरंतर माला उनकी बदलती रहती है, नई नई माला धारण करती है। जो भी लीला कर रहे हैं उसमें संकर्षण साथ में है, श्री बलराम साथ में गाने में नाचने में। तो इस प्रकार वृंदावन में गोचारण करते समय श्री कृष्ण की एक आसक्ति देखी जा रही है गान में। भौरे उनका जस गा रहे हैं और भौरे जैसे जैसे गा रहे हैं श्री कृष्ण वही गा रहे हैं, इसका मतलब अपनी कीर्ति गा रहे हैं। श्री कृष्ण भी अपने कीर्तन में आसक्त है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह है भगवान के कीर्तन का आनंद, वे अपने कीर्तन का आनंद स्वयं लेते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को आत्मा राम कहते हैं। श्री कृष्ण जो आनंद लेते हैं वो अपने आप में आनंद लेते हैं। हम लोगों का जो सुख है मायाबद्ध दशा में वो हमारा अपना सुख नहीं है, जिससे हम लोग बाहर की हवा से आनंद लेते हैं, भोजन से आनंद लेते हैं, बाहर के लोगों से आनंद लेते हैं, वो हमारा अपना आनंद नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण अपने आनंद से आनंदित रहते हैं, उनको बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। तो अपने कीर्तन अपने आप करते हैं। इसीलिए एक ग्रंथ है कवि कर्ण बिलवंगल ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ जिसका नाम है कृष्ण कर्णामृत। उसका अर्थ है कृष्ण के कानों के लिए अमृत। जो श्लोक है कृष्ण कर्णामृत के वो तो कृष्ण के कर्ण के लिए अमृत। श्री कृष्ण स्वयं सुनते हैं उसको, वे आनंदित होते हैं। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा करना, तो नाम कीर्तन करने कौन सेवा है भगवान की? कभी कभी पूछा करते हैं भक्त लोग। भज सेवा है, संस्कृत के भज धातु से भक्ति बनी हुई और भज का अर्थ किया गया है सेवायाम। सेवा को भक्ति कहते हैं। तो नाम कीर्तन करना या भागवत पढ़ना जप करना ये कौन सेवा है भगवान की? तो यह सेवा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को यह सुख देती है। भक्ति हलादिनी शक्ति की वृत्ति है, सुख मिलता है। जब हम लोग जप करते हैं
हम भागवत पढ़ते हैं सुनते हैं तो श्री कृष्ण को उससे सुख मिलता है, यह सिद्धांत है। इस तरह भगवान की बहुत बड़ी सेवा है, भगवान का नाम जप करना जी भगवान की बहुत बड़ी सेवा है और जीव की सिद्धि होती है इसलिए भगवान खुश होते हैं। और ये सच्चिदानंद नाम और रूप है, चरित है, इसलिए श्री कृष्ण को इसको सुनने में आनंद आता है। तो कृष्ण का कीर्तन करना, भागवत पढ़ना, जप करना, यह सब भक्ति के अंदर माना जाता है। इसीलिए तो भक्ति में पहले श्रवण है, श्रवणम कीर्तनम विश्व स्मरणम पाद सेवनम, यह भक्ति है, इससे श्री कृष्ण को सुख मिलता है। अच्छा, अनु जलपति जलपंतम कल वाक्य सुखम क्वचित क्वचित जलपंतम सुखम कल वाक्य अनु जलपति, कहीं कहीं तोते बोलते हैं, सुगा बोलते हैं, तो सुगा के बोलने के साथ ही टे टे उनके समान कृष्ण बोलते हैं। आप लोग सुने हैं ना सुगा का बोलना, किसी किसी घर में सुगा रखे जाते हैं सुख, और श्रीमद भागवत के वक्ता है सुख, इनका नाम सुख था। क्यों सुख नाम इनका पड़ा? सुखदेव गोस्वामी की बोली तोते के समान मधुर अच्छी है, इसीलिए इनका नाम दिया गया सुख। और कुछ है आचार्यों का कहना है कि राधा रानी के सुख है नित्य लीला में, वही अवतार लिए थे श्रीमद भागवतम कहने के, इसलिए उन्हें सुख कहा गया, इसलिए सुखा हुआ। सुख एक पक्षी होता है हरे हरे पंख वाला और बहुत सुंदर बोलता है सुख, तो सुख पक्षी जैसे जैसे बोलते हैं तो कभी कभी उससे भी अधिक सुंदर वाक्यों में श्री कृष्ण जलपंतम जल्पना करते हैं अनु जलपति, सब जगह वर्तमान क्रिया का प्रयोग है अनु जलपति। तो क्वचित सवलगु कुजंत अनुकुजति कोकिलम, और कहीं कहीं कोयल मनोहर स्वर में कुहू कुहू शब्द करते हैं तो उनका अनुकरण करते हुए श्री कृष्ण कूजते हैं और उनको भी डिफीट कर देते हैं। कोयल से भी अधिक मधुर बोलते हैं, कभी सुगा के साथ बोलते हैं कभी कोयल के साथ बोलते हैं। क्वचित च कलहंसा नाम अनुकूजति कूजतम, और कहीं कहीं कलहंस राजहंस कूजते हैं किसी सरोवर में बोलते हैं तो उनकी बोली का अनुकरण करते हैं। अभिनृत्यंत नृत्यंतम बढ़ हास्यम क्वचित, और कभी कभी मयूर नाचते हैं तो उनके साथ वे भी नाचने लगते हैं। मयूर अपना पंख फैला करके नाचते हैं तो श्री कृष्ण अपना पीताम्बर फैला करके नाचने लगते हैं, इस तरह अनुकरण करते हैं। और इतना सुंदर नाचते हैं कि हास्यम क्वचित उनका उपहास तक कर देते हैं, मतलब मयूर से अधिक सुंदर नृत्य करते हैं, ये कहने का आशय है। मयूर का नृत्य आप लोगों ने देखा होगा, पंख को चारों तरफ ऊंचा करके और ऐसे नाचते हैं, खास करके जब आकाश में मेघ छाते हैं तब मेघ गरजते हैं तब मयूर नाचने लगते हैं। ब्रज में वृंदावन में बहुत मयूर है, आज भी बहुत मयूर है, और बरसाने में जहां तहां जाने पर कभी कभी नाचते हुए देख सकते हैं, खास करके बरसात में प्राय हम लोग देखते हैं नाचते हुए मयूर। तो श्री कृष्ण इतना सुंदर नाचते हैं, मोरों की नकल करते हैं, उनसे भी अधिक सुंदर लगते हैं। मेह गंभीरया वाचा नाम भी दुर्गान पशुन क्वचित दाहति प्रत्या गोगो पार मनुज्ञया, कभी कभी ऐसा होता है कि जब पशु दूर चले जाते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें पुकारते हैं बांसुरी में और कभी कभी बिना बांसुरी के, हे श्यामली हे धवली हे सुरभि, इस तरह गौओं का नाम रख रख कर पुकारते हैं। कैसी वाणी से मेघ गंभीर आवाज, मेघ का गर्जन आप लोग सुनते हैं, बादल जिस तरह गरजता है इतने ऊंचे ध्वनि में बुलाते हैं गौओं को, बहुत मधुर और ऊंची आवाज में मेघ गंभीर आवाज। और श्री कृष्ण की वह बोली गौओं और गोपों को बहुत मनोज्ञ लगती है, बहुत मधुर स्वर से पुकारते हैं, इस तरह भगवान की बोली है। नित्य लीला में क्या क्या श्री कृष्ण करते हैं उसको थोड़ा सा दिग्दर्शन करा रहे हैं, इसको स्थाली पाक न्याय कहते हैं संस्कृत में। स्थाली का अर्थ होता है पटलो ही बर्तन जिसमें भात बनाया जाता है, खीर बनाया जाता है। तो उस बर्तन के एक चावल को छू करके देखा जाता है पक गया, तो एक चावल पक गया है तो उससे पूरा अनुमान कर लिया जाता है पूरा चावल पक गया, पर एक चावल को छू छू कर नहीं देखना पड़ता है ना, एक चावल छू लेने से पता चल जाता है। इसको स्थाली पाक न्याय कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी एक दिन की और वह भी एक दिन की लीला में एक चावल छू रहे हैं, ऐसे तो अनंत लीला है भगवान की, लेकिन उस तरह के छोटी सी लीला का उल्लेख करके उसके द्वारा अन्य लीलाओं का संकेत कर देते हैं। तो श्रीकृष्ण की यह बोली है, उनका नृत्य है, उनका गान है, कभी गाते हैं, कभी बोलते हैं, कभी नाचते हैं। बताइए परम सत्य भगवान है, कभी निराकार हो सकते हैं, कभी कल्पना आ सकती है इन लीलाओं को पढ़ने पर कि भगवान निराकार है। कौन ऐसा भागा होगा जो इस तरह की बोली न सुनना चाहे, उनको नाचते हुए न देखना चाहे। तो भगवान कैसे हैं, परम सत्य भगवान एक व्यक्ति हैं, और केवल व्यक्ति ही नहीं है, लीलायमान है, वो लीला कर रहे हैं, उनके एक्टिविटीज हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, यह है कि उनका जन्म और उनका कर्म दिव्य है, हम लोगों जैसे नहीं से भिन्न है, लेकिन जन्म कर्म है दिव्य है। भगवान इतना कहते हैं दिव्य है, तो दिव्य से और हम लोगों के जन्म कर्म से क्या भेद है, ये समझना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जो भी हो पहले भगवान के कर्मों को, भगवान की लीलाओं को जानना है। चकोर क्रम चक्र हो भारद्वाजन से बढ़ अनुरौतिस सत्ता नाम भीतव्या सिंधे, और कभी कभी वृंदावन में बाघ और सिंह गरजते, वहां बाघ और सिंह भी है, लेकिन वृंदावन के बाघ और सिंह क्रूर नहीं है। एक जगह वर्णन आया हुआ, श्री कृष्ण चूंकि वहां रहते हैं इसलिए वहां के सभी जीवों में परस्पर प्रेम होता है, एक दूसरे पराक्रमण नहीं करते, परंतु फिर भी कुछ पशुओं का स्वभाव होता है कि वो बाघ के गरजने से या सिंह के गरजने से बहुत भयभीत हो जाते हैं। पक्षी चकोर चक्रवा भारद्वाज भरद्वाज आदि पक्षी होते हैं, जब बाघ गरजता है तो वे लोग भयभीत होकर के बोलने लगते हैं। तो श्री कृष्ण भी बाघ सिंह के गरजने पर जब पक्षी चिल्लाते हैं तो उसी तरह से ये भी चिल्लाने लगते हैं। तो प्रश्न होगा कि बाघ सिंह कौन है जो श्री कृष्ण में भय उत्पन्न कर रहे हैं। वृंदावन लीला में भगवान के भीतर भी भय उत्पन्न करना है, यह तो निश्चित है कि भगवान के प्रिय भक्त ही हैं जो बाघ और सिंह के रूप में ऐसा कर्म करते हैं। भयभीत होना एक श्री कृष्ण को आनंद देता है, यह एक लीला है, वो सचमुच में भयभीत होते हैं। जैसे माँ यशोदा के बंधन से डर गए कि मुझे बांधेगी मारेगी, रो रहे थे, तो उनका नाटक नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। पर उस अवस्था में भी वे ब्रह्मा शिव आदि के कंट्रोलर हैं, काल के भी काल है। इसीलिए माता कुंती अपनी स्तुति में कहती हैं, जब मैं आपकी उस दशा का स्मरण करती हूँ तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसे आप क्यों करते हैं। यदि कोई कहे कि आप नाटक कर रहे थे, तो नहीं नहीं नाटक नहीं था, कुंती ने अपनी आंखों से देखा था कृष्ण की उस लीला को। श्रीपद वल्लभाचार्य की सुबोधिनी टीका में लिखते हैं कि जिस दिन उखल बंधन हुआ था उस दिन दीपावली थी और प्रथा मथुरा से गोकुल गई थी नंद बाबा के यहाँ, मथुरा में रहती थी वसुदेव जी की बहन प्रथा, तो वह गई थी उस दिन, तो उसने अपनी आंखों से देखा था कृष्ण का बंधन और कृष्ण रो रहे थे। तो उसी को महाभारत युद्ध के बाद कुंती कह रही है कि जब गोपी यशोदा ने आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई थी उस समय जो आपकी दशा हो गई थी, उसे देख करके मैं मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि जिससे साक्षात भय भी भयभीत होता है उसकी यह दशा। इस समय मैं देखी हूँ कि आप इस विश्व युद्ध का नायकत्व किए हैं, हमारे बच्चों की रक्षा ब्रह्मास्त्र से किए, इससे किए, उससे, और एक दिन आप ऐसे थे कि रस्सी उठाने से डर गए, रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे कि आपके आंखों में से आंसू गिर रहे थे और आंसुओं से आंख का काजल घुल गया था और आपके गाल पर हाथ पर काजल लग रहा था, आप सचमुच भयभीत थे। इन दोनों लीलाओं में पृथ्वी मिलान कर रही है, एक तो ऐसा पोजीशन है कृष्ण का कि समस्त देवताओं के नायक हैं, काल के भी काल हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इतने मधुर हैं कि माँ यशोदा के भय से रो भी रहे थे, और श्री कृष्ण रो रहे हों या काल पर शासन कर रहे हों, दोनों समय में भगवान है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जब रो रहे हैं तो भगवान नहीं रह गए हैं, कुछ और पोजीशन बदल गया है, वे अच्युत है। वृंदावन में भी जब बाघ के गर्जने से भयभीत होते हैं और पक्षियों जैसा चिल्लाते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह भगवान का केवल नाटक मात्र है। श्रीजीव गोस्वामी ने अपने भगवत संदर्भ है नामक षट संदर्भ के अंदर बहुत सुंदर विवेचन किया है भगवान के स्वरूप का। यह नित्य लीला है, क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत संगोपवर्धनम स्वयं विश्रमत्यार्जन पात संवाहना। पर कभी कभी जब गोपों के साथ मल्ल युद्ध करके, पहलवानी करके या और क्रीड़ा से बलराम जी थक जाते हैं, तो थकते हैं तो किसी गोप के गोद में अपना सिर रखकर बलराम जी सो जाते हैं किसी वृक्ष के नीचे, बहुत क्रीड़ा करने से थक जाते हैं, क्रीड़ा परिश्राम। तो उस समय श्री कृष्ण श्री बलराम जी का परिश्रम दूर करते हैं, पाद संवाहना भी, श्री कृष्ण चरण दबाने लगते हैं, पंखा झलते हैं, मधुर गीत गाते हैं, इस तरह श्री बलराम जी को श्रम रहित करते हैं। स्वयं विश्रमती अर्जुन, क्योंकि बलराम जी बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई की चरण सेवा करना छोटे भाई का धर्म है। शास्त्र भी ऐसा कहता है, बड़ा भाई पिता के समान माना जाता है और बड़े भाई की पत्नी माँ के समान मानी जाती है। तो सेवा कर रहे हैं श्री कृष्ण, चरण सम्मान, स्वयं विश्रमति जो कि थके हैं, वो भी श्री कृष्ण भी थके हैं, साथ में खेले हैं, कूदे हैं, सब किए हैं, लेकिन फिर भी जब बलराम जी पेड़ के नीचे सोते हैं किसी सखा के गोद में सिर रख करके, तो श्री कृष्ण पाद संवाहनाद भी विश्राम चरण दबाते हैं। आजकल के लड़के तो पिताजी का भी चरण नहीं दबाते, भाई का दबाना तो बहुत दूर की बात है है ना। अब यह परंपरा दूर होती जा रही है, लेकिन पहले के लोगों के जीवन में दैनिक रूटीन था, स्क्रीन था कि वे अपने से बड़े लोगों का चरण दबाते थे। अभी भी भारतवर्ष में कहीं कहीं यह परंपरा चल रही है, ये सीखने की बात, कुछ नैतिकता भी दिखती चलती है सब जगह। यह भगवान की लीला है, लेकिन फिर भी छोटे भाई के पोजीशन पर रहकर भगवान जो कुछ कर रहे हैं ये सीखने की बात है। जब वे थक करके सोते हैं तब दूसरे भक्त उनका चरण दबाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, नृत्य तो गायतः कापी बल्ग तो युद्धतो भीतर गृहस्थ हस्त गोपानंद संतो पर संसत। कभी कभी दोनों भाई हाथ में हाथ मिलाकर के खड़े होते हैं और अन्य सखा का नृत्य देखते हैं, दोनों भाई खड़े होकर कहते हैं अब तुम लोग नाचो, तो नृत्य तो सखा नाच नाच करके दिखाते रहते हैं और ये प्रशंसा करते हैं, वाह वाह इतना सुंदर नृत्य है, स्वर्ग के देवता भी ऐसा सुंदर नृत्य नहीं कर सकते। श्री कृष्ण प्रशंसा करते हैं और वास्तव में प्रशंसा करते हैं, भगवान के पार्षद जितना सुंदर नृत्य करते हैं उतना देवता नहीं कर सकते। गायतः को अभी और कभी विशेष गीत गाते हैं आलाप ले करके तो भगवान ने प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा में कभी कभी व्यंग भी करते हैं, तुम्हारा तो ऐसा गला है कि इससे चित रथ गंधर्व भी फेल हो जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वलगत, वलगत का अर्थ है आलाप लेना विशेष गीत का, और कभी कभी युद्ध करते हैं सका लोग, पहलवानी आपस में करते हैं, तो आपस में हाथ मिलाकर कृष्ण और बलराम उन सखाओं की प्रशंसा करते हैं और कभी कभी हंसते हैं। क्वचित पल्लव तल पेशु में युद्ध श्रम कर सीता वृक्ष मूला श्रेय से गोपत संग पुगढ़, और कभी कभी श्री कृष्ण विश्राम क्रिया करते हैं वृंदावन में, जैसे लोक में चरवाहे थक जाते हैं काम करते करते खेलते खेलते थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण कभी कभी विश्राम करते हैं। तब श्री कृष्ण के विश्राम लीला का वर्णन कर रहे हैं, कचे नियुद्ध श्रम कर सीता, खास करके श्री कृष्ण थक जाते हैं नियुद्ध करने से। नियुद्ध का अर्थ होता है रेसलिंग, पहलवानी, खूब चलता रहता, गौ चलती रहती है अपनी इच्छा से, और वृंदावन में हमेशा खेल गान कभी पहलवानी ये सब चलती रहती है, ये आनंद की लीला। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए तो मथुरा में उन्हें चिंता होने लगी, उनके माता पिता कारागृह में थे और शत्रु के नगर में गए, चिंतित थे कि उनकी एक लीला है, वहां की राजनीति का चक्र था, लेकिन वृंदावन में कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, आनंद से खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते और द्वंद युद्ध करते करते थक जाते हैं, युद्ध श्रम कर सीता तब वृक्ष मूलाश्रय हसे थे, किसी वृक्ष के मूल में जड़ के पास सो जाते हैं। कैसे? पल्लव तल पे सु, पत्तों के बनाए हुए तल्प पर, तल्प का अर्थ सज्जा, सहते अस्मिति सज्ज, जिस पर मनुष्य होता है उसको शयन करते हैं, सज्जा करते हैं, उसी को तल्प कहते हैं। तो वृंदावन में श्री कृष्ण जाते हैं गौरे चराने के लिए, तो अपने साथ कोई बिछौना लेकर नहीं जाते हैं, स्लीपिंग बैग और यह हुआ कुछ भी नहीं। हम पहले पहले सुने स्लीपिंग बैग, सोने का थैला, स्लीपिंग बैग क्या है, वो तनोगुण का थैला है, बस सोने के लिए एक बैग टांगे चलो। जो भगवान जब गौएं चराने चलते हैं तो सोने के लिए और कोई सामान नहीं रखते, बर्तन नहीं रखते, पानी पीने के लिए, खाने के लिए, कभी कभी तो पत्थर पर खा लेते हैं, खास करके बरसात के दिन में, दही भात है और सब है, साफ धोया हुआ पत्थर है उसी पर शान करके खाए और चले, कहाँ कहाँ बर्तन बांधे चले धोया चले, इस तरह खेलना है बजाना है तो और सब एक्स्ट्रा बैगेज के वक्त है, तो प्रतिदिन करना था। यह भी वास्तव में एक सुख है, जब मनुष्य के पास बहुत ज्यादा फालतू सामान न हो तो यह भी कभी कभी बहुत सुख देता है, और जो उच्च कोटि के महात्मा हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, तो वो तो अपने हाथ को ही पात्र के रूप में काम लेते हैं, इसलिए उनको परपात्र कहते हैं, जितना हाथ पलट जाता है उतना ही खाते हैं, उसी से पीते हैं, बहुत तरह का बर्तन नहीं रखते। तो श्री कृष्ण उसी तरह से लीला कर रहे हैं, तो वृंदावन के वृक्षों से पत्ते तोड़ तोड़ करके बच्चे तुरंत बेग लगाते थे, और देखिए संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान जिनको है वो समझ जाएंगे, यहाँ क्वचित पल्लव तल्पेशु, यदि तल्पे शब्द रहता तो उसका अर्थ होता एक वचन एक सज्जा, तल्पेशु बहुवचन का प्रयोग, इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण बहुत सी सज्जाओं पर सो जाते हैं। श्री कृष्ण के हजारों मित्र हैं, सब चाहते हैं कृष्ण हमारे बिछौने पर सोए। सभी पेड़ का पत्ता बिछाते हैं, सज्जा बनाते हैं, पग बनाते हैं, और चार पांच ग्रुप होता है भक्तों का, सखाओं का, वो सोचते हैं श्री कृष्ण हमारे तल पर शयन करें, कोई सोचता है हमारे तल पर शयन करें। अलक्षित रूप से श्री कृष्ण उस समय अपना स्वरूप विलास प्रकट करके और सबकी सज्जाओं पर सो जाते हैं, परंतु एक ग्रुप के सखाओं को ऐसा ही लगता है कि हमारे पास कृष्ण सोए। इस तरह सबकी इच्छा पूरी करते हैं और उस समय कोई उनका चरण दबाता है, कोई गीत गाता है, कोई कुछ करता है, किसी के गोद में सिर रहता है श्री कृष्ण का। इस तरह सब लोग गाते हैं, सुखी होते हैं। यहाँ पर इस लीला का संकेत किया गया है। क्वचित पल्लव तरुपेश, कभी कभी श्री कृष्ण सोते हैं बहुत सी सज्जाओं पर, बहुत सी सज्जाओं पर कुछ और संकेत कर रहा है। इसे इस लीला का संकेत है। इसके साथ ही साथ इसके द्वारा एक और लीला का संकेत है। श्री कृष्ण गोचारण करते करते थक जाते हैं तो किसी किसी गहवर निकुंज में चले जाते हैं। निकुंज में जहाँ श्री राधा आदि गोपियां आती हैं और वे भी श्री कृष्ण को सज्जा पर सुलाकर उनका चरण संवाहन करती हैं, पंखा झलती हैं, सुखी करती हैं। बहुत सी सज्जाओं का प्रयोग किया गया है कुछ सोच समझ करके। क्योंकि श्री बलराम जी के लिए जब प्रयोग हुआ तो बस एक सज्जा का प्रयोग हुआ, सज्जा शब्द का प्रयोग ही नहीं है वहां। अगर किसी गोप के उत्संग को बरहन तकिया बना करके और बलराम जी सो गए। लेकिन श्री कृष्ण के सोने का वर्णन किया गया है तो पल्लव तलपेशु, पत्तों की सज्जाओं पर शयन की। एक व्यक्ति बहुत सी सज्जाओं पर तो शयन करेगा नहीं, लेकिन यह है श्री कृष्ण की विशेषता, वो सब जगह प्रकट होते हैं। और वैसे भी देखिए कितने मंदिर हैं पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी भोग लगाते होंगे अपने घर में, लक्ष्मी जी भोग लगाती हैं, सब भक्त भोग लगाते हैं, टाइमिंग भी सब कहीं लगभग रहता है, पर श्री कृष्ण सब खा जाते हैं, है? खाते हैं ना, ये कहीं समय है, यहाँ भोग लगता है तो न्यूयॉर्क में ही भोग लगता होगा और थोड़ा भारत के टाइमिंग में भले अंतर होगा, लेकिन एक व्यक्ति सब जगह की चीज खा रहा है। कोई आदमी थोड़े ऐसा कर सकता है, है ना? आदमी को क्या भोग लगाएगा, वो तो कहे इसको डायबिटीज है तो चीनी मत डालो, वो मत डालो, ये मत करो, वो मत करो। भगवान के लिए कोई नियम नहीं। जगन्नाथपुरी में कृष्ण 52 बार खाते हैं तो कितना हो गया, 24 घंटे में आधा आधा घंटा का भी अंतर नहीं और ये कुछ देर तक सोते हैं, 52 बार भोग लगता है उनको, इतना खाते हैं। सभी भक्तों का प्रेम से दिया हुआ कोई भी उपहार भगवान स्वीकार कर सकते, कहीं प्रकट हो सकते। अर्चा विग्रह है, अर्चा विग्रह में श्री कृष्ण प्रकट, डायरेक्ट भी प्रकट होते हैं। हम जो कुछ उनको दे रहे हैं वास्तव में स्वीकार करते हैं, हमारी अर्चना को, हमारी सेवा भावना को स्वीकार करने के लिए भगवान किसी मूर्ति में प्रकट होते हैं। तो हम कुछ कहते हैं तो भगवान सुनते हैं, हम उनका दर्शन करते हैं, हम अपना सुख दुख उनको निवेदित करते हैं, कुछ देते हैं तो लेते हैं, इसी के लिए प्रकट होते हैं। किसी जीव में आसक्ति नहीं है कि वह प्रकट होकर हमारी इन भावनाओं को, हमारी सेवाओं को ले सके, है ना? चाहे आप कितना भी प्रेम कीजिए किसी आदमी से, आप किसी आदमी से प्रेम कीजिए और कहिए कि मैं चाहता हूं कि आप 10 जगह 10 रूप में प्रकट होकर तो सबका खा लीजिए, एक जगह का ज्यादा नहीं खा सकता है ना? आप कहिए कि मैं बहुत प्रेम करता हूं, आप और 2-4 शेर ज्यादा खा लीजिए, 2-4 किलो और खा लीजिए, नहीं खा सकते। प्रेम अपनी जगह पर है, नहीं उसकी शक्ति अपनी जगह पर, भगवान खाते हैं। तो मैं यह एक अवसर पाकर कह रहा हूं कि श्री कृष्ण अनेक सज्जाओं पर शयन करते हैं, सभी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। जब श्री कृष्ण सोते हैं तो उस समय सखा क्या करते हैं, पाद संवाहनम चक्र के चित तस्य महात्मनः। कोई कोई सखा उनका पाद संवाहन करते हैं, कोई कोई पाद संवाहन करते हैं, अनेक सज्जाओं का वर्णन है। और एक जगह पर पांच या छह ऐसे सखा लगे हुए हैं सेवा करने के लिए, जो श्री कृष्ण के सखा है, परंतु सेवा करना यह जो है ये भक्ति का मूल है। यशोदा जी सेवा करती हैं, राधा रानी सेवा करती हैं, मधुमंगल सेवा करते हैं, नंद बाबा सेवा करते हैं। सेवा करना, श्री कृष्ण को सुखी करना, ये सबका सार है। माँ यशोदा दूसरे तरह से सुखी करती हैं, राधा रानी दूसरे तरह से सुखी करती हैं, लेकिन सब श्री कृष्ण के सेवक हैं, ये निश्चित समझना चाहिए। कभी कभी लोग भावुकता बस कह देते हैं कि श्री कृष्ण की राधा रानी सेविका नहीं है। कभी कभी मैं ऐसा सुना पाता हूँ, वो सेविका नहीं है, क्या है तो प्रिया है। प्रिया का मतलब क्या होता है, तो प्रिया आज तक की प्रिया समझ रहे हो, तो सेवा कराने के लिए प्रिया है। श्री कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में श्री राधा रानी श्री कृष्ण की दासी है, ये निश्चित समझना चाहिए। लेकिन कृष्ण से वो इतना प्रेम किए हैं, इतना प्रेम किए हैं कि श्री कृष्ण स्वेच्छा से उनके अधीन रहते हैं, परंतु वह अधीनता उनके भक्ति के कारण अधीनता है। स्वरूप से श्री कृष्ण किसी के अधीन नहीं है, सारी शक्तियां कृष्ण के अधीन है। लग्नी शक्ति है राधा रानी, वो कृष्ण के अधीन है, चाहे स्वरूप शक्ति हो, संविद शक्ति, संधिनी या हलादिनी या माया शक्ति या तटस्थ शक्ति, सारी शक्तियां कृष्ण के अधीन है, कृष्ण शक्तिमान है। इन शक्तियों का स्वरूप है कि कृष्ण के अधीन रहेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे। तो चाहे वो यशोदा रानी हो या नंद महाराज हो, चाहे राधा रानी हो, सभी कृष्ण के दास दासी है। ये सिद्धांत है, श्री कृष्ण सेव्य है, प्रभु है। ऐसे प्रेम के बस तो माता यशोदा से भी डर रहे हैं, माँ यशोदा डांटती है या खिलाती है तो खाते हैं, सुलाती है तो सोते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो गया कि श्री कृष्ण स्वरूप से दास हैं। श्री कृष्ण सदा ईश्वर है, ईश्वर और परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारण। तो यहाँ यह संकेत है कि ये तो ये सखा है, साथ ही गोविंद चराते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, फिर भी श्री कृष्ण का पाद संवाहन करते हैं। पाद संवाहन चक्र किसी तरह से महात्मा, पाद संवाहन चक्र और अपरे हक पाप मानो व्यजन सम विजयन। और कुछ है सखा व्यजन से पंखा से हवा करते हैं, वो पंखा भी घर से नहीं ले गए हैं, वृंदावन के वृक्षों के पत्ता से वो पंखा तुरंत बना लिए हैं और कई मिलकर के पंखा करते हैं। पंखा झलना एक सेवा है कृष्ण, कुछ चरण दबा रहे हैं, कुछ पंखा झल रहे हैं। अन्य तदन रूपाणी मनोज्ञानी महात्मा गायन विष्णु महाराज स्नेह क्लीन दिया समय। और कुछ सखा ऐसे हैं जो उस शयन लीला के अनुरूप मधुर गीत गाते हैं, जिससे श्री कृष्ण को निद्रा आ जाए। सुख से अगर मधुर कंठ से गाया जाता है धीरे धीरे तो नींद आती है, श्री कृष्ण को सुलाने वाले गीत होते हैं। आज भी वृंदावन के ऐसे कई मंदिर हैं जिन मंदिरों में श्री कृष्ण के सोने के लिए गीत गाए जाते हैं, विशेष राग के गीत गाए जाते हैं। और हम एक बार गए थे राधा दामोदर मंदिर में, तो हम दो तीन भक्त थे, हम लोग कहे थे हम लोग कीर्तन गाएंगे, तो हम लोग कीर्तन चालू किए तो कुछ लोग मना किए, कहे कि नहीं नहीं ईश्वर में नहीं गाएंगे। तो दूसरा व्यक्ति आया, वो पद गान करने लगा, वो कहा कि इस समय ठाकुर जी आराम कर रहे हैं, इसलिए उस लीला के अनुरूप गीत गाना चाहिए। यहाँ लिखा गया है अन्य तदन रूपाणी मनोज्ञानी महात्मा है, उस शयन लीला के अनुरूप कुछ सखा गाने लगते थे। मैं किस तरह से गाते थे, गायंती सु महाराज स्नेह क्लीन भी अच्छा नहीं, स्नेह से जिनकी बुद्धि क्लीन हो गई थी, आर्द्र हो गई थी, कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, अनुराग है कि गाते गाते उनको देखते देखते स्नेह से चित द्रवित है, इस तरह से गाते कि कोई लोग गाते हैं, कोई चरण दबाते हैं, कोई पंखा झलते हैं, कोई इस तरह से। और कुछ सखा वन से फूल चुन चुन करके माला बनाते हैं, कुछ फल जुटाते हैं, किसी किसी जगेंगे तो इसके बाद खाएंगे, इस तरह से लगे हुए रहते हैं लीला में। एवं निगूढ़ात्म गति सुमाया गोपात्म चरितैर्विजृम्भते रेमे रमालालित पाद पल्लव ग्राम्यै समं ग्राम्यवदेशतिष्ठितैः। इस प्रकार इन समस्त लीलाओं का समाहार करते हुए सुखदेव गोस्वामी श्लोक में गा गाकर कथा कह रहे हैं कि इस प्रकार अपने स्वरूप को छिपाकर वृंदावन में भगवान लीला कर रहे हैं, अपने को एक गोपात्मज के रूप में प्रकट किए हैं। वास्तव में श्री कृष्ण का नित्य स्वरूप जो है वो है गोपाल स्वरूप, गोपात्मज, और उसे लीला कर रहे हैं। जिनके चरण कमल की सेवा लक्ष्मी जी करती है वे भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ ग्रामीण लीला करते हुए विहार करते हैं। ग्राम्यवत जिनके चरण सरोरूह की सेवा करने के लिए ब्रह्मा आदि तरसते हैं, चरण सेवा जल्दी मिलती नहीं है, वे भगवान यहाँ आकर श्री बलराम जी की सेवा करते हैं और खेलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। आज भी गांव के लड़के जब गौ चराने जाते हैं तो विभिन्न प्रकार का खेल करते हैं, ज्यादा समय उनका खेलने में बीतता है। अब तो धीरे धीरे चरागाह कम होने लगे, इसलिए गौओं को चराने में दिक्कत बढ़ती जा रही है। पहले वन था सब जगह, गांव के पास भी काफी चरागाह रहते थे, तो गौओं को चराने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती थी, इसलिए चरवाहे प्राय खेला करते थे। और ये तो वृंदावन है, तो वृंदावन में ऐसा नहीं है किसी के खेत में गौ पड़ जाएंगी, किसी की फसल खा जाएंगी, ये हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। तो प्राय श्री कृष्ण का समय खेलने में दिक्कत है। तो इस प्रकार एक गांव के लड़के जैसे लीला करते हुए बिहार करते थे। ये प्रथम विधायक के रूप में रहते हैं। तो उससे डरते हैं कि तस्मात्कृत नराहारात, वे लोग नर का आहार करते हैं, मनुष्य को खाते हैं। जब मनुष्य को खाते हैं तो कौन ऐसा मनुष्य होगा जो साहस करेगा वहां जाने का, जो फल खाने जाएगा और उसी का आहार हो जाएगा, ये खा जाए तो कौन जाएगा। तो हे कृष्ण, हे शत्रुओं का वध करने वाले, हे अमित राम, मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, पशु तक नहीं उस वन में जाता है, घास सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, पशु नहीं जाते, पक्षी तक नहीं जाते हैं, पक्षी भी फल खाते हैं वो भी नहीं जाते हैं, पशु पक्षी ही विवर्जित, पक्षी संघ ही विवर्जित, न पशु जाते हैं न पक्षी जाते हैं, आदमी की बात तो दूर रहे। तो वहां से फल वाय तो कोई नहीं खाया, विद्यंते अभुक्त पूर्वाणी, अभुक्त पूर्वाणी, पूर्व में कोई भी फल को नहीं खा सका है, फलाने से भीड़ चल, और तुम सुन करके देखो कितनी सुगंध आ रही है, तुम ध्यान से करके देखो। कृष्ण से कहते हैं देखो उधर की हवा आ रही है, तुम जरा सुन लो, ध्यान दो, कितनी सुगंधित वायु आ रही है, उन फलों में कितनी सुगंध है, ये सब है सुरभीर गंधो विशेष चुनाव करिए, तो देखो सुगंध चारों तरफ फैली हुई है और हमारे नाकों में बहुत सुंदर लग रही है सुगंध के कारण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो सबके बाद तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या चाहते हो, तो कहते प्रयोक्ष कार्य न उसमें गंध लोभी चेतता, हमारा चित्त ताल फल के गंध से लोभित है, जिसकी गंध इतनी सुंदर है उसका स्वाद कितना अच्छा होगा, जब दूर से गंध इतनी अच्छी लग रही है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। इसलिए हमारी इच्छा है हे राम, हमारी इच्छा है कि आप वहां चलो और यदि रोचते, यदि आपको अच्छा लगे, यदि आपको ऐसी लीला करने में रुचि हो उसका बध करके और फल देने में, तो चलिए वांछस्ति महती राम गम्यता में रोचते, आप चलिए यदि आपको अच्छा लगे तो धनकासुर को मार करके और हमें फल दीजिए खाने के लिए। बच्चों ने ये नहीं कहा कि चलो खा लो, बच्चे ये कहे कि हम खाना चाहते हैं, यही प्रेम की भाषा है वास्तव। यदि कृष्ण बलराम से यह कह देते कि तुम खाना चाहते हो तो चलो मारो, तो कह देते हम नहीं खाना चाहते। बच्चे इसीलिए कह रहे हैं कि हम खाना चाहते हैं, यह खिलाने की एक पद्धति है, वे चाहते हैं कि कृष्ण बलराम उस फल को खाए, लेकिन अपनी उत्कंठा व्यक्त करेंगे तब कृष्ण जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि वांछा अस्ति महती राम, हे राम हमारी महती वांछा अस्ति, हमारी बहुत बड़ी इच्छा है, गम्यता यदि रोचते, और आपको यदि अच्छा लगे तो चलिए, यदि हमारी इच्छा को आप पूरा करना चाहते हैं तो चलिए, क्यों नहीं पूरा करेंगे, अपने सखा की इच्छा को क्यों नहीं पूरा करेंगे। यह है कहने की शैली, किसी कोई को तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए, आप खा लीजिए, आप खाना चाहते हैं तो वो कह देगा नहीं, तो अभी साथ में बैठे टाइम में मुझे तो वस्तु बहुत अच्छी लगती है मैं तो खाऊंगा, न इच्छा हो तब भी खाना चाहिए, तो उसके खाने के कारण वह व्यक्ति जो अपना प्रिय व्यक्ति वही खा लेता है। आजकल के युग में ये सिस्टम समाप्त होता जा रहा है, उस टाइम में खाना चाहते हैं तो नहीं, अच्छा ओके ठीक है। ये इसी तरह से विश्राम आदि करने के विषय में है, स्वयं अपनी उत्कंठा व्यक्त करनी चाहिए कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो ठीक है ठीक है, साथ में खा लेते हैं। तो एक व्यवहार की बात है, प्रेम की बात, तो बच्चे कह रहे हैं हमारी इच्छा है, वो चाह रहे हैं कृष्ण को खिलाना है और कृष्ण को कीर्ति देना है, उनकी हार्दिक इच्छा यही है, लेकिन कह रहे हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा को यदि आप पूर्ति करना चाहते हो तो चलो। एवं सुहृद बचा श्रुत्वा सुहृद प्रिय चिकित्सया प्रहस्त जगमतुर गोपेर वृतय ताल बनम प्रभु, तो अपने सुहृद के मित्र की यह बात सुनकर उनका प्रिय करने के लिए प्रियम कर्तुम इच्छया हंस करके दोनों प्रभु कृष्ण बलराम चले, हंसे हाँ हाँ चलो 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 हम तुमको फल देंगे खाने के लिए। सुहृद प्रिय चिकित्सया शब्द है, भगवान की अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं थी फल खाने की, लेकिन अपने भक्तों की इच्छा को जानकर उनका प्रिय करने के लिए चले, उनको ये समझ गए कि ये हमारे सुहृद हैं और हमको जस देने के फेर में हैं और हमको चाहते हैं कि ये फल खाएं, इसलिए चले, हंस करके चले उन सबके साथ। तो जहां पर इतने विकराल भयानक असुर रहते थे गधा के रूप में, उस वन में एकाएक चले जाना ये साधारण बात नहीं थी, तो सब बच्चे जो पीछे पीछे चल रहे थे और श्री कृष्ण भी ऐसे चल रहे थे पीछे थे, लेकिन श्री बलराम जी साहस किए आगे आगे गए, ताल वन के भीतर प्रवेश करके थोड़ी दूर पर और एक ताल वृक्ष को पकड़ करके बहुत झकझोरने में बल प्रविश बाहुभ्याम तालन संपरिकम्पयन फलानी पातयानाशल मत वृत युवा जैसा, जैसे कोई मतवाला हाथी किसी वन में प्रवेश करे और किसी वृक्ष को झकझोरे, इस तरह बलराम जी कई ताल वृक्षों को एक साथ पकड़ लिए। ये तालन शब्द है बहुवचन में, ताल वृक्षों को पकड़े और बाहु भ्याम दोनों भुजाओं से सम परिकम्पयन, उसको कपा करके झकझोर करके और बहुत सा फल गिरा दिए। तो फलों के गिरने के धम धम शब्द हुए कई बार, बड़े बड़े फल थे और फल ऊंचे से गिर रहे थे तो बहुत जोर की आवाज हुई, बहुत फल गिरे अकस्मात, बिना आंधी के, बिना तेज हवा के, बिना किसी कारण के। फलों के गिरने का शब्द धनुकासुर के कान में गया, सही कैसे फल गिर रहा है, वो बहुत चिंतित हुआ। फलानाम पतताम शब्दम निसन्न असुर रासव, वह असुर गधा, रासव माने गधा, वह असुर जो गधे के रूप में था सुना फलों के गिरने का शब्द। कौन गिराया फल उसको मारने के लिए चला, अव्य धावत क्षिति तलम सनगम परिकम्पन, स नगम परिकम्पन, जब वह पृथ्वी पर चला तेज गति से दौड़ते हुए, जिधर से फल के गिरने का शब्द आ रहा था उधर चला। और इतना भारी गधा था, इतना उसने उसके चलने में वेग था कि जब वो चल रहा था तो पृथ्वी कांपने लगी पर्वतों के साथ, पर्वत भी कांपते हुए नजर आ रहे थे, इतना जोर से चला था। बहुत बलवान दैत्य थे, आकर के देखा कि एक गोरा लड़का वृक्षों को झकझोर रहा है। वो आया तो बलराम जी भयभीत नहीं हुए, हंस रहे थे, ऐसे झकझोर रहे थे और भी गिरा रहे थे फल, वास्तव में फल क्या गिरा रहे थे उसको चुनौती दे रहे थे आने के लिए। तो आ गया तो एक गधों के पास इस तरह की टैक्टिस होती है, उपाय होता है मारने का, किसी के पास आते हैं आ करके पीछे मुड़ जाते हैं, तो पीछे मुड़ करके दुलत्ती चलाते हैं, यही उनका स्टाइल है मारने का। समित्य तरसा प्रत्येक द्वाभ्याम पद्याम बलम बलि निहत्य और सिक्का शब्द मुंचन परिसर खुला। सुदेव स्वामी कहते हैं खल था, खल दुष्ट था। खल शब्द का अर्थ होता है खातम लाती थी खल, जो दूसरों को गड्ढे में डाले उसको खल कहते हैं। इसका अर्थ ये है कोई मनुष्य किसी मनुष्य को पकड़ करके और उसके साथ गड्ढे में गिर जाए और यह सोच करके कि भले मैं मर जाऊं लेकिन इसके साथ यह भी मर जाए, तो उसको खल करता है। ऐसे वो जानता है कि गड्ढे में गिरूंगा तो मेरे हाथ पैर भी टूटेंगे, चाहे मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं हो, आखिर ये तो मर जाएगा ना, जिसको मैं लेकर के गिर रहा हूं वो मर जाएगा। संस्कृत में खल शब्द का ही अर्थ होता है, शुभ शब्द का ही अर्थ होता है, अपना अहित करके भी जो दूसरे का अहित करे उसको खल कहते हैं। एक संस्कृत का श्लोक है, उसका भाव है, एक बार एक व्यक्ति वन में गया, जंगल में गया और अपने साथ आटा चावल घी जो भी था सब लेकर के गया था और ऐसे रह रहा था, जंगल में रह रहा था। एक दूसरा व्यक्ति उसका परिचित मिल गया, परिचित नहीं अपरिचित था, वो मिल गया तो पूछा कस्तम भद्र, हे सज्जन आप कौन है? तो कहता है खलेश्वर हूं, मैं खलेश्वर हूं। खलेश्वर है कस्मा घोरे बने स्थिर, तो इस घोर वन में आप क्यों हैं, क्यों रुके हुए हैं? तो कहता है व्याघ सार्दुलाद भी खाद्यो हम इत्याशय। वो कहा कि मैं वन में इस आशय से हूं कि हमारे शरीर को कोई बाघ या सिंह खा जाए। तो वो पूछा कि इतना घोर निर्णय आप क्यों किए, अपना शरीर बाघ और सिंह को क्यों खिला देना चाहते हैं? तो वो कहा कि मैं इसलिए अपने शरीर को खिलाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे शरीर को खा करके बाघ और सिंह को आदत हो जाए मनुष्य को खाने की, तो जो भी जंगल में आएंगे उनको ये लोग खाया करेंगे। मैंने सुना है कि मनुष्य का मांस बहुत मीठा लगता है बाघ सिंह को, तो अभी ये लोग खाए नहीं है जंगल में किसी मनुष्य, तो मैं चाहता हूँ मैं खिला दूं तो उनको चस्का लग जाए, जो भी मनुष्य आएंगे उनको ये खाया करेंगे, इसलिए ही मेरा निर्णय। तो कहा कि हाँ निश्चित खल ठीक है धन्य है। इस तरह के लोग तो खल कि अपना देह नष्ट करके भी दूसरे को नष्ट करने की सोचना, ठीक इससे विपरीत विचार वाले को सज्जनेश्वर कहें, सज्जनों में श्रेष्ठ, कि अपना अहित करके भी दूसरों का हित करते, उनको वास्तव में संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं। मतलब अपना समय कुछ बर्बाद हो जाए, अपना पैसा बर्बाद हो जाए, लेकिन उसके चलते दूसरों का हित हो तो वो करने के लिए तैयार है। और खल तो सीधा किसान लेकर के दूसरे का अहित करते, अपना देह देकर के भी दूसरे का अहित करते, ये खल था। खल था करते भगवान ने इतना फल बनाया है दुनिया में, सब इसी तरह से लोग रोक रोक करके रखे, किसी को खाने ना दें, वो सब धनुकासुर। आजकल के तो युग में पता नहीं क्या हो गया है, कोई फल का वृक्ष नहीं लगा रहा है, कुछ लगे हुए हैं वे सारे फल पहले बाजार में चले जाते हैं, इस तरह से फ्री लड़कों को खाने के लिए फल नहीं मिलता है ना, कहीं नहीं खाने को मिलता है। तो आजकल के युग में ऐसा होता जा रहा है कि भगवत भावना का, कृष्ण भावना का ज्ञान बच्चों में बहुत कठिनाई से आ पाएगा। कारण इसका यह है कि लोग प्रकृति में नहीं जी रहे हैं, जो भी वस्तुएं हैं वो कृत्रिम ढंग से मिल रही है। जानते हैं शास्त्र जब भगवत भक्ति का उपदेश करता है तो सबसे पहला उपदेश शास्त्र का यही है, जतो वा इमानी भूता निजायन्ते, जीव को सोचना चाहिए कि सब कुछ जिनसे उत्पन्न होता है वे हैं प्रभु, वे हैं भगवान, हमारा भी जन्म उनसे हुआ है और हमारे जीवन में जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं सब भगवान दे रहे हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए, तब जीव भगवान को समर्पण करता है। लेकिन आज के युग में वस्तुएं जो हैं विकृत रूप में आ रही हैं, इनडायरेक्ट में आ रही हैं, इसीलिए लोगों को पता नहीं चलता है कि वास्तव में भगवान दे रहे हैं। जो बच्चा कभी गाय दूहते हुए नहीं देखा है, उसको बताया जाए कि ये दूध गाय से आता है तो वो कैसे समझेगा, वो तो कहेगा नहीं तो स्टोर हाउस से वही कहेगा ना, देखा ही नहीं कि गाय कब कब दूही जाती है, कहाँ दूही जाती है। कुछ लड़के आगे चलकर प्रश्न करेंगे, क्या दूध गाय से बनता है, करेंगे प्रश्न, अभी भी ये प्रश्न बनने लगा। मैं एक बार वृंदावन से गोवर्धन जा रहा था बस पर, तो हमारे साथ हमारे गुरु भाई बैठे थे, कविचंद महाराज जापान में प्रचार करते, तो सरसों के पौधों को देख पीला पीला फूल लगा था, तो महाराज पूछे कि ये क्या चीज है, तो मैं कहा कि मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट, तो पूछे इसका यूज क्या है, मैं कहा कि इसके सीड से, इसके बीज से तेल निकलता है जिसको मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, तो कहते हैं अच्छा मस्टर्ड सीड से तेल निकलता है, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। वो तो शहर में रहने वाले व्यक्ति कभी जानते नहीं है कि मस्टर्ड के बीज से, सरसों के दानों से तेल निकलता है, और वास्तव में कोई नहीं देखा है, न पेरते हुए देखा न मशीन देखा पेरने वाले, तो कैसे समझेगा, हम लोग तो सहज समझेंगे, खास करके मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, जो अपने सिर पर सरसों का दाना लेकर के पेराने गया है नील में और पेरा करके तेल लाया घर पर, तो क्यों नहीं समझ जाएगा, लेकिन दूसरे के लिए कठिन है, बहुत कठिन है। किसी भी वस्तु का एक तो कोई उत्पादन नहीं कर रहा है, उत्पादन नहीं भी किया लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरर लिख करके और मुहर लगा देना ये दे रहा है, कोई भी चीज पर, इधर तो स्पेशली अमेरिका में
कोई भी चीज देखिए तो उसको मैन्युफैक्चरर का नाम दूसरा लिखा हुआ है, लिखा हुआ वो लिखा हुआ, जैसे इधर देखते हैं ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस तो वृक्ष से बना हुआ है, फल से बना हुआ है, ऑरेंज से बना हुआ है, ये बताना चाहिए किस तरह से धरती से ऑरेंज उत्पन्न होता है और ऑरेंज से रस निकाला गया है, ये सब ज्ञान देने की आवश्यकता है कि वास्तव में सब कुछ भूमि से निकल रहा है और भूमि भगवान की शक्ति है, भगवान कृष्ण ने भूमि बनाया है, तो अंततः कृष्ण हमें जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। लेकिन आजकल जो कुछ भी है सब स्टोर से आ रहा है, जो कुछ भी है, और उस पर आदमी का या कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा है मैन्युफैक्चर बाय गॉड, किसी पर नहीं लिखा हुआ है ना, जो वो भी लिखा रहता तो आज आगे के बच्चे पढ़ते कि भाई भगवान का बनाया हुआ है, और जबकि सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, कुछ भी आदमी का बनाया हुआ नहीं, केवल रूपांतरण किया हुआ है थोड़ा सा, मूल रूप में कुछ भी बनाया हुआ आदमी का नहीं। हम तो कहते हैं कि यदि एक मच्छर के मस्कीटो की टांग टूट जाए तो सारी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर एक टांग की मरम्मत नहीं कर सकते। वास्तव में उनसे कहा गया तुम बाहर कोई सामान मत लो, अपना कुछ बनाओ, तो अपना क्या बनाएगा, अपना वो क्या निकालेगा, क्या बना सकता है, कैसे क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। तो पहले के युग में ऐसे लोगों को फल खाने को मिलता था फ्री, आज भी भारतवर्ष में कई ऐसे रोड हैं जहाँ जिन रोडों पर आम लगा हुआ है और लड़के गर्मी के दिन में आम खाते रहते हैं, आज भी देखा गया है, खास करके मध्य प्रदेश में मैं देखा बहुत से आम अब पकना चालू हुए हैं, लड़के खाते रहते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी। तो इस तरह से भगवत ज्ञान होने के लिए इस बात को दिखाना आवश्यक है कि जीवन की सारी आवश्यक वस्तुएं भगवान द्वारा दी जा रही है संपूर्ण रूप से, कोई दूसरा नहीं दे रहा है। तो खल उसको कहते हैं जो भगवान के द्वारा दी हुई वस्तुओं का उपभोग न होने दे और बल्कि अपना जीवन बर्बाद करके दूसरों के दुख की व्यवस्था कर, उसको खल कहते हैं। धेनु के खल था और बहुत बलवान था, फल वहां पर सड़ जाते थे गिर करके, लेकिन किसी को खाने के लिए अनुमति नहीं कुछ से, और क्या बात थी क्यों नहीं खाने देते, बस इतना दिखाने के लिए कि मैं कंट्रोलर हूं, बस किसी की मजाक नहीं कर सकता। ये कंट्रोलर हो, ईश्वर हो तो पालन करो, जो दूसरा प्रकृति ने दिया है फल, भगवान ने दिया है, किसको खाने दो, तो नहीं खाने नहीं दूंगा, यही हमारी ईश्वरताई है, किसी को खाने नहीं दूंगा। तो आज आ गया असली ईश्वर, अब पता चलेगा। भगवान जब इस जगत में आते हैं तब दिखाते हैं मैं ईश्वर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, और दंड देते क्रूरता से। ऐसा नहीं है कि भगवान धर्म का प्रचार करने आवे और उनको ही कोई दंड दे दे इस दुनिया में, उनको ही फांसी पर चढ़ा, तो भगवान ऐसे आएगा नहीं डर कर। भगवान कहते मैं आता हूं तो परित्राण है साधु नाम विनाश है से दुष्कृत, मैं दुष्टों का दमन करता हूं, साधुओं की रक्षा करता हूं। भगवान इस तरह आते हैं, ये भगवान है, कृष्ण भगवान है, इस तरह से आए कि तो आया और श्री बलराम जी के छाती पर दोनों दुलत्ती मारा, पीछे मुड़ करके काश शब्द का अर्थ रेकना, जैसे गधा रेखते हैं, गधे की बोली को रेकना कहते हैं हिंदी में, वो रेका, बहुत जोर की आवाज किया और पीछे मुड़ करके दुलत्ती मार बलराम जी के छाती में मारा, पर इस तरफ, लेकिन वो लगा नहीं, थोड़ा दूर पड़ गया, वो मारा लेकिन उस चरण लगा नहीं, फिर चला गया दूर। अब देखा कि इस पर लगा नहीं तो उसका क्रोध और बढ़ गया, उसका वार विफल हो गया, प्रहार विफल हो गया, तो इसलिए वो दुखित हुआ। और कुछ दूर जा करके फिर आया, फिर मुड़ कर बलराम जी पर दोनों लात चलाया, उसके दोनों पैर को श्री बलराम जी पकड़ लिए और एक हाथ से दोनों पैर पकड़ लिए। ये आश्चर्य की बात, दोनों हाथ नहीं लगाना पड़ा श्री बलराम जी को। देखिए, और देखने में उतने छोटे बच्चे हैं, तो जब ही उसके दोनों चरण निकट आए तो भगवान ने सोचा, श्री बलराम जी ने सोचा कि ठीक, चरण दे रहा है तो चरण ही लेना चाहिए, जो चीज अर्पित कर रहा है उसी को लेना चाहिए। तो चरण पकड़ लिए उस खाल का, गधे का, और चरण पकड़ करके और घुमाए, प्राक्षिपत उसे घुमा करके और एक ताल वृक्ष के ऊपर मारे जोर से। तृण राजाग्रह, तृण को ये ताल वृक्ष को वास्तव में वृक्ष नहीं तृण कहा जाता है, तृण राज है यह, तो उसके मस्तक पर मारे जहां फल लगा हुआ है, उस पर इतना जोर से मारे बलराम जी को, ताल वृक्ष गिरा तो उसके साथ से दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, इस तरह से बहुत से ताल वृक्ष गिर गए एक बार के मारने से। इतना जोर से उन्होंने घुमा करके मारा। सतम गृहत्वा प्रपदोर भ्रामी तैक पाणिना, एक पाणिना है यहां लिखा गया, एक हाथ से चरण दोनों पकड़ करके और घुमा करके जोर से मारे। तो भ्रामर तक जीवता हो तो घुमाने से ही उसका जीवन चला गया, मर चुका था केवल घुमाने से, और उसके मरे हुए देह को ताल वृक्ष के अग्रभाग पर उन्होंने मारा। तेना हतो महातालो वेद मान बृहद चिरा पार्श्वस्थम कंपियन भवन सच्चान्यम सोपी चापर। इतना जोर से मारा कि बृहद शिखा वाला वह वृक्ष अपने निकट के वृक्ष को गिरा दिया, उसने फिर अपने निकट को गिरा दिया, इस तरह से कई वृक्ष गिर गए, भराशायी हो गए। और वृक्षों के गिरने से बहुत बड़ा शब्द हुआ, और उसके देह के गिरने से, वृक्षों के गिरने से, तो और जितने भी गधे के रूप में असुर थे सब दौड़े, क्या हो गया, इतना घनघोर शब्द क्यों हो रहा है। तो ये सब लोग आने लगे और ठीक उसी तरह से प्रहार करने लगे। तो श्री बलराम जी अब सबका पैर पकड़ पकड़ कर उसी तरह से मारना चालू करते थे ताल वृक्षों पर। एक ही लीला चौड़े पकड़ना, घुमाना, घुमाने में ही मर जाते थे, इसके बाद फेंकते थे। ये है अनंत बलशाली भगवान की लीला। कोई प्रयास नहीं करना पड़ा श्री बलराम जी को, खेल खेल में जैसे वो ढेला फेंक रहे हैं वैसे पकड़ पकड़ करके मारते हैं। ब्रज में भगवान कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं लिए, मथुरा जब गए तो प्रथम बार हाथी का दांत लिए, और भी हाथी को मार करके दोनों भाई हाथी दांत लिए थे। ब्रज में कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं थे, किसी को तमाचा मार देते थे, किसी को घुमा करके मार दिए, किसी के मुंह में हाथ डाल दिए, जैसे केसी दानव के मुख में हाथ डाल दिए, अघासुर के पेट में जाकर के बढ़ गए, बकासुर की चोंच फाड़ दिए, उसके कंठ में जलन लगे, किसी को पैर से उलार दिए सकटासुर को, किसी को ओठों से मार दिए जैसे पुतना को, कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए। ये भगवान की भगवत्ता है। इस तरह से जैसे महावाते रिताई, और लगा कि जैसे महा आंधी उठ गई हो, इस तरह से वृक्ष गिर गए बहुत से, और बहुत जोर के शब्द हुए। तो इस पर सुखदेव गोस्वामी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ओहो ये अद्भुत लीला है श्री बलराम जी की। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नैतत् चित्रम भगवती यनन्ते जगदीश्वरे, जो जगत के वास्तविक ईश्वर है, कंट्रोलर है और छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, ऐसे भगवान बलराम जी के लिए कोई विचित्र बात नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। ओतप प्रोतम इदम जस्मिन तंतु संग यथापट, ये सारा जगत श्री बलराम जी में ओतप प्रोत है उसी तरह से, जैसे वस्त्र के सूक्ष्म डोरे एक महान वस्त्र से बंधे हुए होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं बितान टेंट, तो कुछ ऐसी रस्सियां होती हैं जिन पर वो सारा टीका होता है, मोटी मोटी रस्सियां बीच में होती हैं। तो श्री बलराम जी इस तरह से सारा जगत इन पर टीका हुआ है, सारा जगत की सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, पालन करते हैं। तो जो इस तरह जगत का पालन करता है, प्रलय करता है, उसके लिए गधा को इस तरह से मारना कौन बड़ी बात है? तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य मत कीजिए, कथा सुन करके परीक्षित महाराज आश्चर्य कर रहे थे, तो मैंने ये आश्चर्य नहीं है उनके लिए, तो खेल है। तथा कृष्णम च रामम च ज्ञाते धनकस्य कुष्ठारो भेद्रोन सर्वे सबद्धा हतबान। तो और जो उसके बच्चे हुए बंधु थे वे सब गधा के रूप में आए। तो बलराम जी के पास दूसरे नंबर में नहीं आए, कृष्ण के पास आए। उन गधों ने सोचा कि बलराम बहुत बलवान है, ये धनुकासुर को मार दिया तो कृष्ण को मारना चाहिए। तो वे आए तो कृष्ण भी वही स्टाइल अपना है जो बलराम जी ने अपनाया था वही। और छोटे छोटे गधे भी आए, वे भगवान के सखाओं पर चलाए दुलाती, तो वे लोग भी बलराम जी का स्टाइल अपना है सभी। वे सब गधा के रूप में आते थे और दुलती मारते थे, तो भगवान के पक्ष के सभी लोग चरण पकड़ पकड़ कर और वही घुमा घुमा करके मारने लगे। ये बहुत लीला हुई, प्राय सभी सखाओं ने एक दो गधा मारा सबने मिल करके इस तरह से। उधर से वे लोग धनुकासुर की नकल करते थे, ऐसे गधों का स्वभाव भी होता है, उसी तरह से चलाते हैं दुल्हन। तो और इधर से भगवान श्री कृष्ण लीला किए, बलराम जी लीला किए, और भी जितने सखा थे सब लीला किए। तांस ताना पत्थर कृष्ण रामश्चर मेरे को लीलाया गृहित पश्चात चरण प्राय तीर्ण बारिश। और कोई भी व्यक्ति, कोई सखा कृष्ण या बलराम कोई भी गधा को मारता था तो नीचे नहीं फेंकता था, ताल के वृक्षों पर ही सब फेंकते थे, उसको गिराना चाहते थे, फल गिराना चाहते थे। तो बच्चे कोई ढेला मारते हैं आम गिराने के लिए, वृक्ष में से आम गिराने के लिए कुछ मारते हैं, तो ऐसे मरे हुए गधों से ताल फल गिराते थे मार करके। सभी यही लीला किए, लेकिन एक बार गिरने के बाद दोबारा किसी गधे को नहीं उठाते थे। इतनी अधिक संख्या में गधे थे कि बारी बारी से आते थे, पकड़ पकड़ कर घुमा घुमा कर और ऐसे फेंकते थे, घुमा घुमा कर फेंकते थे। तो सैकड़ों सखा थे और सैकड़ों गधा थे, इस तरह से आए, इस तरह से मारते मारते लगभग पूरे वृक्ष गिर पड़े, वहां धराशायी हुए। और ताल फलों से और मरे हुए गधों से वह भूमि भर गई, सब जगह फल भी दिखाई पड़ रहे थे, गधे भी दिखाई पड़ रहे थे, तो कोई फल खाया नहीं। लिखा गया है कि तो कोई फल, कोई लड़का फल नहीं खाया, क्योंकि सब जगह गधा मरे हुए थे, फल कोई नहीं खाया। यह भूमि और मरे हुए गधों के देह से भरी हुई है भूमि, और ताल वृक्षों के अग्र भाग से भरी हुई है भूमि, ऐसी लगती थी जैसे बादलों से घिरा हुआ नभस्तलम आकाश। आकाश में कभी कभी बादल भर जाते हैं, तो विविध प्रकार के बादल होते हैं आकाश में, कोई उजला होता है, कोई काला होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। तो फल प्रकर संकीर्ण, फल कहीं कहीं दिख रहे हुए थे जगह जगह, और मरे हुए गधों के देह और ताल के वृक्ष, कहीं कोई हरा भरा लग रहा था, कोई पीला लग रहा था, कोई काला। तो जैसे आकाश सुंदर लगता है कई प्रकार के बादलों से, मेघों से, इस तरह से वह ताल वंश सुशोभित हो रहा है। परस्पत सुमहर कर निशंग गंधा गया मुचु पुष्प वर्षाए चक्रुर वाद्यानि पुष्टि। तो श्रीकृष्ण और बलराम के इस सुमहत कर्म को देखकर देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे और स्तुति करने लगे। तो यहाँ पर लिखा, अथ ताल फलान आदल मनुष्य गत साधुसा तृणम च पश्वस्तिल हत भेनु कान। इसके बाद ताल फल को वहां के मनुष्य खाने लगे, उनका भय दूर हो गया, मनुष्य खाने लगे, मतलब जो वन में कोल भील आदि रहते थे वे लोग खाने लगे, भगवान के सखाओं ने नहीं खाया। यहाँ टीका में बात लिखी गई है उन श्लोकों के अनुसार, मनुष्य फलानी आदम न तो कृष्ण सखा है, कृष्ण के सखा फल नहीं खाए, तो गए थे फल खाने के लिए लेकिन कोई नहीं खाया। तीर्ण चर पशु हत धेनु कारण, और पशु तीर्ण चरने लगे, गौं तो तीर्ण चरने लगी, गौं को कोई गम नहीं था कि हमारा घर गधा पड़ा है क्या पड़ा है, लेकिन भगवान के सखा फिर फल नहीं खाए। मनुष्य शब्द का प्रयोग है, पुलिंदा दर्थ सनातन गोस्वामी वन में रहने वाले पुलिंद वनवासी मनुष्य वो फल खा रहे थे, भगवान के सखा फल नहीं खाए, तो उस समय से उस वन में सब लोग घूमने लगे, अब पशु मनुष्य पक्षी आदि सब घूमने लगे, अब भय चला गया। तो यह उस दिन की लीला है जिस दिन कृष्ण प्रथम दिन गोचारण करने गए थे। अच्छा, तो अब कृष्ण के ब्रज लौटने की लीला का वर्णन कर रहे हैं, यह एक दिन की विशेष लीला है। प्रतिदिन जैसे शुरू में कहा गया वैसी लीला कृष्ण करते थे, और प्रतिदिन शाम को लौटते थे, इसको सांझी लीला कहते हैं। यह प्रत्यावर्तन लीला, जिस तरह वन में जाते थे तो उस तरह लौटते थे, लेकिन लौटते समय गोपी जनों को बहुत सुख मिलता था और वन में जाते समय बहुत दुख होता था, और लौटते समय ब्रजवासियों को दर्शन होता था जो गांव में रहते थे, सामने से देखते थे कृष्ण आ रहे हैं, इसलिए यह आनंद की लीला है, इसका वर्णन अधिक किया जाता है शास्त्रों में। तो कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानोन गये गोपै साग्रजो ब्रज मा ब्रज। गोचारण आदि करके संध्या के समय श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गौओं के साथ लौट रहे हैं, तो अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण कमल पत्राक्ष, कृष्ण की आंखें कमल कर्णिका के समान है, सुंदर नेत्र हैं, अच्छा पुण्य श्रवण कीर्तन, और उनकी कीर्ति का श्रवण और कीर्तन जिनकी अविद्या का नाश करने वाला है, तो अपने सखाओं के द्वारा स्तूयमान प्रशंसित श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में लौट रहे हैं। ब्रज में लौटते समय श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं, तंगो रजस्छुरित कुंतल बद्ध बलहा बन्या प्रसून रुचिरे क्षण चारु हासम वेणु क्वणंत मनु गैरम गीत कीर्ति गोप्यो दुदृक्षित दृशो जगमन समेता। श्री गोपी जनों के सौभाग्य का वर्णन करते हैं, इस लीला का वर्णन कर रहे हैं, तम गो रजस्छुरित कुंतल बद्ध वर, श्री कृष्ण के कुंतल पर केशों पर गायों के खुर का रज पड़ा है, इस तरह से श्री कृष्ण लौटते हैं। गौएं आगे आगे चलती हैं, अगर पीछे से श्री कृष्ण चलते हैं तो गौओं के खुर से उड़ी हुई रज श्री कृष्ण के केश कला पर पड़ी हुई, रज से धूमिल है केश, और सुंदर सुंदर पुष्प गुथे गए हैं केशों में, इसके साथ ही साथ वर्णमाला पहने हैं, और खूब सुंदर दृष्टि है, मंद मधुर मुस्कान है, और इस तरह से वेणु क्वणंतम श्री कृष्ण वेणु का क्वणन कर रहे हैं, वेणु वादन कर रहे हैं, और सखा उनकी कीर्ति गा रहे हैं, इस तरह से लौटे, और गोपियां उनको देखने की लालसा से अपने अपने घरों से निकल करके छत पर चढ़ गई, बाहर आ गई थी देखने के लिए, तो उनका एक एक क्षण करोड़ों करोड़ों युग के समान दिखता था कृष्ण के ब्याह में, इसी प्रतीक्षा में रहती है कृष्ण कब लौटेंगे कब लौटेंगे। और यह प्रतिदिन की लीला है, प्रतिदिन गोपियां दिन में श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल रहती थी, शाम को उन्हें थोड़ा सा आनंद मिलता था, एक वो भी थोड़ा आनंद मिलता था फिर कृष्ण अपने घर में चले जाते थे, तो फिर रात भर का विरह रहता, इस तरह से लेकिन कभी कभी श्री कृष्ण रात्रि में रास विहार करते थे, इसलिए गोपी जनों को सुख होता था। बाकी समय में तो विरह में मरती रहती थी। शाम के समय उन्हें आनंद आता था। उस लीला का वर्णन कर रहे हैं। यह बहुत सुंदर लीला है, जबकि श्री कृष्ण के केस पर गौओं के खुर का रस पड़ा है। सवेरे जाते थे तो सवेरे उनका मुख दिखाई नहीं पड़ता था, पीछे से दर्शन होता था, और अभी धूल उठती नहीं थी उतनी, इसलिए उनके केशों पर धूल नहीं जमी रहती। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के केशों पर घोड़ों के टाप से उड़ी हुई धूल रहती है। तुरंत रजो विधुम्र विश्व कचलित श्रृंगार जमन कृपा भीष्म पितामह ने वर्णन किया। और वृंदावन में गोरज छिड़ छिड़ मन व्याप्त, गायों के खुद से उड़ी हुई रज व्याप्त रहती है। भक्तजन भगवान के इस शोभा का ध्यान करते हैं अष्टकालीन लीला में। इंसान को लौटने के लिए गोपियों के झुंड में खड़े होकर हिंदी भाषा में एक बहुत सुंदर कवि हुए हैं, वो मुस्लिम थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में विभोर हो गए, उनको रसखान कहते हैं। हिंदी भाषा पढ़ने वाले लोग जानते हैं रसखानी जी की कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं भगवान कृष्ण पर। तो ये साझी लीला का वर्णन किया है, एक कविता है उनका बहुत सुंदर, हम लोग कभी कभी उसे गाते थे। इसी श्लोक का उन्होंने अनुवाद किया है। गोपियां देख रही हैं और आपस में वर्णन कर रही हैं, वो इस तरह से पद है। गोरज विराज भाल लहल ही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तानरी। तो स्पष्ट है शब्द गोरज विराजे भाल, भाल मनुष्य गोरज विराजे भाल लहल ही बन माल, और बनमाला बहुत फ्रेश है, बहुत सुंदर लग रही है, तो उस पर भी गोरज पड़ गया है। आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तानरी। गोरज विराजे भाल लहल ही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तानरी। कोई गोपी बोल रही है। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर वैसी, बंक चितवनी मृदु मंद मुस्कानी रे। देखो देखो कृष्ण की चितवन कैसे कैसी मंद मुस्कान है। कदम्ब बीटप के निकट तटनी के आय, आटा चढ़ी चाही पीत पट फरानी रे। फिर वो कह देखो कदम्ब बीटक के निकट आ गए हैं, तटनी जमुना के निकट आ गए हैं, और आटा पर चढ़ करके अटारी पर चढ़ कर तो उनके पीत पट की फहरानी देखो, चाहे मैंने देखो ब्रजभाषा में होता है, देखो देखो पीत पट कैसा लहरा रहा है। कदम्ब बीटक के निकट तटनी के आय, आटा चढ़ी चाही पीत पट फरानी। रस बरसाए तन तपन बुझावे नैन, प्राण नीरी झावे वह आवे रस खानी। देखो देखो दिन भर की जलन मिटा रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, मेरे आंखों को और मन को रिझाते हुए रस खानी आ रहे हैं। रसखान कवि का नाम भी है, और रसखान का अर्थ होता है रस का खान, ये रस का खजाना आ रहा है। देखो आ रहे हैं आ रहे हैं। तो सभी गोपियां अपने अपने घरों से निकल कर कृष्ण को देखने लगती है। तो इसको संध्या लीला कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण जो मंद मुस्काते हैं तो उनके मन को अक्सर हर्षित करती है यह मुस्कान। खास करके ब्रजवासी जो घर पर रहते हैं गोपियां, तो चिंतित रहती हैं कि हमारे प्रियतम गाय चराने गए हैं, वन में गए हैं, उनको बहुत दुख हुआ होगा, दिन भर पैर में कांटे गड़ते होंगे, पत्थर गड़ते होंगे, लेकिन श्री कृष्ण शाम को जब आते हैं उनका खिला हुआ चेहरा प्रसन्न चेहरा रहता है तो उसको देख करके गोपियों का शोक दूर हो जाता है, तो समझती हैं कि हमारे प्रियतम सुखी है ना। तो श्री कृष्ण अपना आनंद प्रकाशित करते हुए शाम को लौटते हैं, यह दिखाते हैं कि निर्विघ्न हम गौओं को चरा करके आ गए, गौओं पर कोई संकट नहीं आया, बल में गौएं खूब अच्छी तरह से चल चुकी हैं, हम भी आनंद में हैं। इस तरह गाते बजाते ही ब्रज में प्रवेश करते हैं। और कई ऐसे पशु भी होते हैं जो ब्रज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वन में नहीं जाते हैं, तो उनको हर्षित करते हैं बांसुरी बजा बजा करके, वो सुनते हैं कृष्ण आ गए। नहीं तो सबको चिंता रहती है कि वन में गए हैं पता नहीं क्या होगा, बहुत शोक में दिन बीतता है। गोपियां तो यहां तक कहती हैं कि चलसी जद ब्रजा चार यन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणाकुर श्री गति विन कलिलता मन कांत गच्छति। हे कांत, हे प्रियतम, दिन के समय में जब आप गौवे चराने के लिए जाते हैं तो उस समय हमारे हृदय में इतनी पीड़ा होती है कि आपके कमल जैसे सुकोमल चरण में कांटे चुभते होंगे, पत्थर लगते होंगे, उस समय हमारा मन बेहोश हो जाता है। ये तो रात्रि का समय है, अब रात में कहाँ कहाँ वन में भटक रहे हैं, जल्दी प्रकट हो जाएगी, जल्दी आ जाएगी। गोपी गीत में गा रही हैं गोपी जन, रासलीला में जब श्री कृष्ण अंतरहित हो गए तो कहते हैं जब दिन में हमें इतना शोक होता है तो ये तो रात्रि का समय है, आप कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, आप जंगल में मत रहे, आप प्रकट हो जाइए, आप आ जाइए जमुना के पुलिन पर, आप क्यों दुख भोग रहे हैं। इसी को वास्तव में प्रेम कहते हैं। प्रकट रूप से श्री गोपी जनों का कृष्ण से कोई संबंध नहीं था, ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण उनके पति थे और इसलिए चिंता कर रही हैं, लेकिन इसको प्रेम कहते हैं। श्री कृष्ण वन में चले जाते थे और गोपियां उनके चरण की चिंता कर रही थी, चरण में कांटे लगे होंगे, पत्थर चुभते होंगे, और इसे बहुत दुखी रहती थी। इसी को कहते हैं वास्तव में प्रेम भक्ति। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अनिष्ट की आशंका रहती है, अनिष्ट आशंकिनी बंधु हृदय। कालिदास महाकवि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि बंधुओं का हृदय अनिष्ट की आशंका से भरा रहता है। आप कल देखे होंगे कोई व्यक्ति किसी को छोड़ने जाता है कहीं ट्रेन पर या बाईवान पर, तो कहता है पहुंचते ही फोन करना, कुछ लिखना, तुम ठीक से पहुंच गए। वो ठीक से तो पहुंच ही जाएगा, कोई एक्सीडेंट होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बंधु का हृदय है वो मानता नहीं है, आशंका होती है भगवान सुरक्षित पहुंचा दे ये करे। तो गोपियां इस तरह से जय ही श्री कृष्ण वन में जाते थे उसी समय से आशंका भर जाते थे, पता नहीं क्या होगा। और दूसरे कारण एक और था कि श्री कृष्ण पर अनेक संकट आते थे, कोई असुर आया तो कुछ हुआ, ये हुआ। उस दिन से सबको बहुत भारी शंका हो गई थी जिस दिन बिना आंधी के दो वृक्ष गिर गए थे। गिराया था कृष्ण ने, लेकिन कोई इस बात को नहीं माना। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये कृष्ण जब खींचा उखल को तो उसी से दोनों वृक्ष गिरे। तो ब्रज के लोगों ने उन्होंने डांट करके मना कर दिया, वह चुप। एक हरी सिंह जी कवि है, वो कहते हैं देखो सत्य बोलने वाले को लोग डांट रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि इसने जब खींचा उसी समय वृक्ष उखड़े, तो वो लोग मान लिया नहीं उखड़े होंगे उस समय, लेकिन उखाड़ा होगा कोई दैत्य, ये नहीं उखाड़ेगा, ये छोटा सा बच्चा क्या उखाड़ेगा वृक्ष, ये क्या उखाड़ेगा, इसके खींचने से कैसे गिर सकते। तो वृक्ष जब गिर गए बिना आंधी के, तो उसी दिन से बहुत भारी मन में शंका हो गई ब्रजवासियों की, इस बच्चे को मारने के लिए कोई न कोई उपाय ऊपर से हो रहा है, भूत या दैत दानव कुछ उपाय कर रहे हैं, इसलिए इस स्थान को छोड़कर भाग जाना चाहिए। उपनंद महाराज ने कहा था कि हाँ इस स्थान को छोड़कर के चले वृंदावन, लेकिन वृंदावन में भी विपत्तियां आती रही और खासकर कृष्ण को मारने के लिए। तो गोपियां सोचते थे जब कृष्ण घर में सुरक्षित है उस समय तो इनको मारने के लिए इतनी विपत्ति आती, ये जा रहे हैं वन में वन भयंकर स्थान है और इतना सुकुमार हमारे प्रियतम, इतना सुकुमार, इनको कठोर हवा लगेगी, घाम लगेगा, कंकर पत्थर चुभेंगे, हम कैसे जिएंगे इसको देख करके सुनकर। वो नहीं चाहते कि किसी के लिए गाय चराने जाए, तो इसलिए शाम के समय उनको बहुत आनंद आता था। ऐसे सबको आनंद आता था श्री कृष्ण को देख करके, लेकिन फिर भी गोपी जनों को बहुत अधिक आनंद आता सबकी अपेक्षा। तो वर्णन करते हैं, पित्वा मुकुंद मुख सारघ मत्सि भिंग तापम जहुर विरहम ब्रज जोषित। ब्रज जोषित, ब्रज की नारियां विरहजम तापम जहुर कहानी, दिन के समय जो विरह का ताप था उस ताप से भी मुक्त हो गई, जलन जलन थी हृदय में, कैसे दूर हो गई जलन, मुकुंद के मुख सारघ को पी करके, श्री कृष्ण के सौंदर्य को, प्रफुल्लित मुख की शोभा को अपनी आंख रूपी बर्तन से पी करके गोपियों की जलन मिट गई, बहुत सुखी हो गए। और श्री कृष्ण भी अपने मित्रों के इशारे से उनका उनका स्वागत करके अब घर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण को देख रहे थे और श्री कृष्ण भी हंसते हुए प्रत्येक गोपी पर मुस्कुरा करके देख करके कुछ इशारा करके कुछ संकेत करके और इस तरह स्वागत करते थे प्रतिदिन। ये भगवान की लीला। मैं शुरू में ही मित्रों से मिलन न किया, किसी संकेत करते थे रास में चलने का, किसी को कुछ किसी को कुछ, इस तरह से गोपियां श्री कृष्ण के नेत्रों से नेत्र मिला करके परम सुखी हो जाती थी। तो यह श्री कृष्ण के लौटने की लीला है। और अब दोनों माताओं की सेवा का वर्णन कर रहे हैं कि वे दिन भर व्याकुल थी, तड़प रहे थे कि आज कृष्ण बलराम नया नया गाय चराने गए, उत्कंठित थे कब लौटेंगे कब लौटेंगे। तो तैर जसोदा रोहिण पुत्रियों पुत्र वत्सल जथा कामम जथा कालम वृद्धत्ता, ऐसे खिलाएंगे, ये वस्त्र पहनाना, ऐसे स्नान कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दिन भर इसी में व्यस्त थी और विरह से कातर थी। तो जब ये लौटे तो जथा कालम जथा कामम, श्री कृष्ण भगवान की इच्छा अनुसार और उनकी कामना के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार और काल के अनुसार जो कुछ जरूरी था वो दी, उसी का वर्णन कर रहे हैं आगे। सबसे पहले गता धान श्रम तत्र मजनू मर्दनाथ ने सबसे पहले स्नान कराए, दोनों माताओं ने स्नान कराया बच्चों को। आजकल की माताएं शाम को तो स्नान नहीं कराती हैं बच्चों को, ना वो सवेरे करा दे यही ज्यादा है। और दिन भर स्कूल से आया, कोई दुकान से आया, फैक्ट्री से आया, सब जगह से, शाम को स्नान बहुत जरूरी है। माता यशोदा स्नान करा रही है, कृष्ण उस समय 6 वर्ष के हैं, 7 वर्ष के हैं, वन से लौटते हैं स्नान, पहले मार्जन की पहले धूल झाड़ करके किसी बहुत फाइन कपड़े से माँ यशोदा धूल झाड़ रही, कृष्ण का केसों का धूल झाड़ रहे थे, धूल झाड़ करके देह का धूल झाड़ी और इसके बाद उन्मर्दन की उबटन लगाई अंग में, खूब बढ़िया से उबटन आदि लगा करके इसके बाद स्नान कराए, स्नान करा करके तो सुंदर वस्त्र भी पहनने को, श्री बलराम जी नीला वस्त्र पसंद करते थे और श्री कृष्ण पीत वस्त्र, तो वस्त्र पहन लिए। इसके बाद चंदन का तिलक लगाया गया, गहना पहनाया गया, वन में तो ज्यादा पुष्पों का गहना पहनते, घर पर आने पर रत्न का गहना पहनते। और इसके बाद माताओं ने खिलाया पिलाया, स्नान करने के बाद खाने को दिया। बच्चों का ऐसा नहीं कि बिना स्नान किए खा लो, इतना मेहनत करते हैं फिर भी स्नान करके खाने को दिया गया। जथा कालम जथा काम, जथा काल संध्या के समय क्या खाना देना चाहिए उसके अनुसार दिया। सब वैदिक शास्त्र में आयुर्वेद में लिखा गया है कि शाम को क्या खाना चाहिए, रात्रि में क्या खाना चाहिए, सवेरे क्या खाना चाहिए, सब कुछ लिखा गया, तो सूर्य यथा काल कहते हैं, शाम के समय क्या खाना देना चाहिए उसके अनुसार दिया। और जथा कामम, आलसो जथा कामम का अर्थ है कृष्ण बलराम जो पसंद करते थे वह भी, तो हो सकता है वो काल से भिन्न भी पसंद करते अब बच्चे हैं, देश काल का नियम क्या लगेगा उन पर, शास्त्र का नियम क्या लगेगा, बच्चों की रुचि होती है उनकी रुचि के अनुसार भोजन दी उनको, तो खा लिए, खाने के बाद कुछ देर बैठे, उसके बाद उन्हें नींद आने लगी, रात्रि आ गए थे, दोनों भाई ऐसे झपकी लेने लगे, तब माता यशोदा ने सुलाया उनको, गोद में लेकर के सो गए कृष्ण, और रोहिणी को गोद में लेकर, रोहिणी श्री बलराम जी को गोद में लेकर के सो गए। इस प्रकार वर्षाजाम दूध के फेन के समान कोमल और उज्जवल सज्जा पर कृष्ण शयन थे। दूध का फेन देखे हैं ना, दूध का फेन जो गाय दूहे हैं वे ज्यादा जानते होंगे बढ़िया से हम लोग देखे हैं दूहे हैं, तो वो दूध का जो फेन गाज होता है बहुत कोमल होता है और बहुत धवल उज्जवल, तो श्री कृष्ण का दूध ऐसा था कोमल और बिल्कुल स्वच्छ धवल बेट, उस पर सोए दोनों भाई। इस प्रकार से श्री कृष्ण की लीला है। एक दिन की स्थालीपात न्याय से लीला सुनाए, इसी तरह से रोज समझना चाहिए, सुलाने की, खिलाने की, नहवाने की जो भी लीला है प्रतिदिन की है, वृंदावन में प्रवेश की, वृंदावन में पक्षियों के अनुकरण आदि की, केवल धेनुकासुर वध की लीला है वो केवल एक दिन की है, दूसरे दिन दूसरी लीला, तीसरी लीला, इस तरह से लीलाएं बदलती रहती, लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो प्रतिदिन होती थी। प्रतिदिन श्री कृष्ण इस तरह वृंदावन में प्रवेश करते थे और क्रीड़ा करते थे। तो अब आगे कालीय दमन की लीला का वर्णन किया जाएगा। काली एक बहुत विषधर सर्प था, जमुना के हरद में रहता था, श्री कृष्ण ने उसको निर्वासित किया, निकाला वहां से, उसका दमन किया, काली दमन विधान। श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं में यह लीला भी बहुत सुंदर है, तो इसे तो हम कल से प्रारंभ करेंगे, आज तक पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए कल चालू करेंगे, कल लगभग दिन भर पूरा करेंगे। हरे कृष्ण, आप पूछ सकते हैं।